नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोय सव्वसाहूणम् एसो पंच नमो यारो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलं चत्तारि मंगलं अरहंत मंगलं मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लघुत्तमा अरहंत लघुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि परम पूज्य देवाधिदेव तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की जय। अब किसी दूसरे क्षेत्र और दूसरे काल की बात है। वो जो घटना चल रही थी अकृत पुण्य की, उसमें खीर बनने की तैयारी आपने सुनी। वैसे वो बच्चा अकृत पुण्य, वो माँ के काम में सहयोग देता था और वो रसोई बनाने में सहयोग तो नहीं देता था, लेकिन कुछ मेहनत करता था। वो मालिक के जो जानवर थे उनको चराने के लिए वो ले जाता था और उन जानवरों की देखरेख भी कर लेता था। अब जो बात हम बता रहे थे कि दूसरे क्षेत्र में और दूसरे काल में एक धनपाल नाम का कोई सेठ हुआ, उसकी पत्नी प्रजावती, उसका जो सबसे छोटा पुत्र उत्पन्न हुआ, उसके पैदा होते ही बागवान ने समाचार दिया कि बगीचे से आज खुदाई करते समय कुछ खजाना निकला है। तब फिर उनने देखा कि क्या खजाना है। सेठ बहुत ईमानदार थे और जिनेंद्र भक्त थे, तो वो तत्काल उस खजाने को लेकर राजा के पास अर्पित करता है, कहता है कि आज मेरे यहाँ पुत्र जन्म हुआ है और ये बगीचे से एक खजाना निकला है, तो मैं इसका स्वामी नहीं हूँ। लेकिन राजा ने पूछा कि क्या पहले कभी नहीं निकला ऐसा कुछ भी, या किसी ने गड़ाया था आपके वंशजों ने पुराने? वो बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई मेरी जानकारी नहीं है और ना कोई ऐसा लिखित कोई प्रमाण है मेरे पास कि जिससे ये जानूं कि किसी मेरे दादा ने परदादा ने कोई संपत्ति बगीचे में गाड़ी हो। तब राजा ने कहा कि ये मैं ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी तुम्हारी वार्ता से ये निश्चित होता है कि ये संपदा तुम्हारे जन्मे हुए पुत्र के पुण्य से प्रकट हुई है, इसलिए इसके स्वामी तुम ही होगे। ये उसी बेटे के पुण्य से आई हुई है। तब फिर सेठ जी आगे कुछ नहीं बोल सके, वो संपत्ति लेकर के आ गए। और कुछ दिनों के बाद जब बच्चा उसकी नाल होती है नाभि स्थान पर, उसको गड़ाने का वक्त आता है, तो नाल गड़ाते समय फिर जब जमीन खोदी तो वहां से दूसरा खजाना निकला। तब फिर इसने फिर से राजा के पास जाकर के वो खजाना देना चाहा, लेकिन राजा ने बोला कि नहीं, देखो एक बार हो गया, अब ये दूसरी बार हुआ, इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारे बेटे का ही पुण्य है, इसलिए तुम ही रखो। ये सारी बातें हुई, तब फिर वो सेठ धन्य हो गए ऐसे बेटे को पाकर, और उन्होंने बेटे का नाम रख दिया धन्य कुमार। नामकरण संस्कार के दिन उस बच्चे का नाम धन्य कुमार रख दिया। सेठानी के गर्भ से जो अंतिम पुत्र उत्पन्न हुआ, उसके पैदा होते ही बगीचे से खजाना निकला, सेठ ने राजा को देना चाहा, लेकिन राजा ने कहा कि तुम्हारे बेटे का पुण्य है, इसलिए इसको मैं नहीं ग्रहण करूंगा, उसके पुण्य से आया है ये खजाना। फिर दोबारा खजाना निकला, जब नाल गड़ाने का समय आया तब भी राजा ने स्वीकार नहीं किया, और फिर सेठ सेठानी को ऐसा लगा कि इस पुत्र को पाकर हम धन्य हो गए, क्योंकि कमाओ बेटे से सब लोग खुश होते हैं। अब ये तो पैदा होते ही साथ संपत्ति लेकर आया, तो बड़ी खुशी हुई और अपने आप को धन्य मानते हुए उस बच्चे का नाम धन्य कुमार रख दिया। अब सबसे ज्यादा लाडला था वो माँ बाप का, और जब बड़ा होने लगा तो फिर उसके जो बड़े भाई थे उनको एक बात खटकती रहती थी कि बिल्कुल VIP ट्रीटमेंट बोलते हैं आज की भाषा में उसको, कि जो माता पिता है इसके प्रति पक्षपात रखते हैं और हम लोग ऐसे ही साधारण रहते हैं, बिल्कुल जनरल लोग, बिल्कुल पब्लिक के समान, और ये बिल्कुल VIP जैसा सब ठाट प्राप्त करता है, मिठाइयां भी इसको खाने मिलती है और जो जो बढ़िया से बढ़िया चीजें हैं वो सब इसके लिए।
उनको धीरे धीरे ईर्ष्या जागृत होने लगी। ईर्ष्या होती है जब अपने को कुछ न मिले और किसी और को मिल जाए, तो फिर सहज मान कषाय के कारण ईर्ष्या पैदा हो जाती है। ईर्ष्या का मतलब जलन, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, ये मेरी भावना में लिखा है। तो उनके अंदर ईर्ष्या बढ़ती गई, दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि उनको बेचैनी हो जाती थी। खैर समय निकल गया, बहुत दिन बीत गए, वो बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, और शादियों के बाद सारा परिश्रम, जो भी कमाई का काम होता था, सारी मेहनत वो लोग करते थे, और धन्य कुमार से माँ कोई भी काम कराती नहीं थी, वो बैठे बैठे ठाट से खाता था। फिर एक बार एक बड़े भाई की पत्नी बोली कि ये जो देवर है हमारा, ये तो कुछ करते नहीं, और फिर आप लोग सारी मेहनत करते हैं, ऐसा अभी थोड़ी है इनकी उम्र ऐसी कि कुछ भी ना कर सके, इस उम्र में भी लोग कुछ मेहनत तो कर ही लेते हैं। और फिर वो जो पति थे, वो उनको भी लगता है कि बात तो सही है कि मेरा जो छोटा भाई है वो बचपन से VIP ट्रीटमेंट, माने एक स्पेशल व्यक्ति की तरह जी रहा है, ये ठीक नहीं है, मतलब अनुचित है, न्याय नहीं हो रहा है, और ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ धन्य कुमार की कथा में ये बात हो। कई बार कई बच्चों से जब बात होती है तो फिर वो यही कहते हैं कि जब तक हमारा छोटा भाई नहीं था ना, या छोटी बहन नहीं थी, तब तक हमें मम्मी पापा बहुत चाहते थे, और अब तो वो उन्हीं उसी में लगे रहते हैं, हमारी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते वो। जबकि भावों में माता पिता के अंदर ऐसा वो नहीं होता कि इनसे घृणा हो और उनसे राग हो, वो ममत्व तो दोनों के प्रति होता है, लेकिन वो जो छोटा रहता है उसके प्रति थोड़ा स्पेशल आ जाता है। तो फिर वो उनको बात बहुत ज़्यादा खटक रही थी। एक बार सातों भाइयों ने बैठ करके कुछ विचार विमर्श किया, और उसके बाद माँ के पास जाकर के कहा कि अब धन्य कुमार छोटा नहीं रह गया, काम करने लायक हो गया, उसको आप काम करना सिखाओ, ऐसे कितने दिन चलेगा? बोले तो माँ बोलती है कि नहीं नहीं, तुम लोग कहाँ बड़ा हुआ, बोले छोटा ही तो है। बोले इस प्रकार उसको जैसे तैसे टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर जब सेठ जी आए शाम को, तब प्रजापति ने अलग से जा करके कहा कि आज लड़के ऐसी बातें कर रहे थे। पिताजी ने बोला कि अच्छा, तो इसमें तुम उदास क्यों हो रही? बोले ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा बेटा कोई काम करने जाएगा, जब कोई किसी काम पर जाता है तो माता पिता तो बहुत प्रसन्न होते हैं, तुम उदास क्यों हो रही है? तो वो बोलती है कि बहुत छोटा है। नहीं नहीं चिंता मत करो, छोटा है तो क्या हो गया, खोटा थोड़ी है, बहुत कुछ कमा कर आएगा। बोले देखो इसके जादू, इसके पुण्य का चमत्कार देखना। तब फिर उसने 100 स्वर्ण मुद्राएं दी धन्य कुमार को, ज्योतिष से पहले तो मुहूर्त निकलवाया कि कब भेजना है इसको व्यापार धंधे के लिए, अच्छा मुहूर्त निकलवाया, माँ ने मिठाइयाँ खिला करके मुंह मीठा करके भेजा उसको, और 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर के एक सेवक को कहा कि तू इसके साथ जाना, और ये जो कुछ भी करे अपना मुंह बंद रखना, बोले तू सिखाना मत इसको व्यापार, इसके पुण्य से जो आएगा सो देखा जाएगा। तो फिर धन्य कुमार ने पूछा कि मुझे क्या करना है पिताजी? तो फिर पिताजी बोलते हैं कि ये जो स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें दी है ना, तुम ये दे देना किसी को, और उसके बदले जो भी मिले वो लेकर के आ जाना, और फिर वो भी अगर कोई लेना चाहे तो वो लेकर के उसके पास जो कुछ हो वो दे करके वो ले आना, इसी का नाम व्यापार होता है, एक चीज देना और दूसरी चीज लेना बस। तो धन्य कुमार बोलता है कि अच्छा इतना आसान काम है, तो फिर इतना सब क्या ज्योतिष को बुलाने की जरूरत है, तो मैं उसी दिन चला जाता। बोले बोले कि नहीं बेटा तू नहीं समझेगा, जा। अब जाता है जैसे ही, तो फिर एक व्यक्ति कहीं दूर से आता हुआ दिखाई देता है, और वो एक घेंटा जिसको मेंढा बोलते हैं लेकर के आता रहता, उसके शरीर पर अच्छे बाल थे, जिन बालों से स्वेटर बनते हैं। तो उसको देख करके धन्य कुमार ऐसे अपने नौकर की ओर देखता है। नौकर बोलता है कि जी मालिक, मैं तैयार हूं, जो भी आप आदेश दो। तो धन्य कुमार उसको रोकता है सामने वाले को, बोले कि भीड़ भाई भाई रुक जाओ। भेड़ मुझे दोगे? वो बोलता है कि मैं जा ही रहा हूं बाजार में, इसको बेचने के लिए जा रहा हूं, तुम क्या दोगे? वो धन्य कुमार बिल्कुल भोला भाला, कभी उसने व्यापार धंधे की चालाकियां नहीं सीखी, लेकिन उसने क्या किया कि तुरंत अपने वो 100 स्वर्ण मुद्राएं निकाल करके उसके हाथ में दे दी। अब वो जो नौकर था ऐसे करके खड़ा हो जाता है, ये क्या कर दिया मालिक ने, मैंने एक भेड़ के लिए इसने 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी उसको। अब वो इनके पैर छू करके, वो जो भेड़ वाला था ना, वो धन्य कुमार के पैर छू करके वापस चला जाता। बोले कि धन्य हो गया आज तुम्हें, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, चला जाता है। और वो स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने उसी कलश में से निकाल करके दी थी जो धन्य कुमार के जन्म के समय बगीचे से निकली थी। तब फिर पिताजी ने यह भी बोला था नौकर से कि जब मेरे बेटे को भूख लगे तो फिर तुम घर ले आना, बोले फिर आगे व्यापार मत करने देना, बोले। नौकर को ख्याल में था, लेकिन अभी कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा था कि भूख लग रही है, तो आगे और बढ़ता है। तो बैलगाड़ी, और उसमें भी ऐसे बैल की बिल्कुल 2-4 दिनों के मेहमान हो, और ऐसी टूटी खटारा पुरानी गाड़ी थी, वो कोई लेकर के आ रहा था व्यापार के लिए। और फिर ये जो भेड़ था वो बहुत ही पुष्ट तंदुरुस्त और अच्छा भेड़ था। तब फिर धन्य कुमार को लगा कि चलो इसकी अदला बदली की जाए, व्यापार किया जाए। गाड़ी वाले को रोकता है, पूछता है कि क्यों गाड़ी वाले भाई, आप ये गाड़ी मुझे दोगे? तब वो सोचता है कि ये अच्छा कोई धनी दिखाई देता है, ठीक है ये लेने को तैयार है, तो फिर देने में क्या तकलीफ है, वैसे भी मैं बेच नहीं जा रहा था, बाजार का दिन। तब उसने बोला कि क्या दोगे तुम, मैं देने को तैयार हूं। तब धन्य कुमार बोलता है कि मेरे पास ये भेड़ है, इसके बदले दोगे? तब वो सोचता है कि आह हा, अच्छा भोला ग्राहक मिला, बोले तो चलो। तुरंत सौदा तैयार हो पट जाता है और फिर अदला बदली हो जाती है। वो नौकर फिर सोचता है कि देखो मालिक ने उस 100 स्वर्ण मुद्राएं तो पानी में निकाल दी, और अब जो कुछ मिला था वो भी गंवा करके ऐसे बैल और ये ले आया कि अब तो इससे क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है। बिल्कुल बूढ़े बैल थे, फिर दुबले पतले, हड्डी पसली दिख रही थी उनकी, बीमार। वो गाड़ी भी बहुत पता नहीं किस जमाने में बनी होगी, ऐसी रद्दी गाड़ी थी। थोड़ी दूर आगे और चलते हैं वो, तो फिर आगे से कोई और दिखाई देता है उनको। धन्य कुमार सोचता है कि चलो इसके साथ भी व्यापार करें। अब वो क्या था कि एक बहुत पुराना पलंग जिसमें जंग काट बोलते हैं ना आप गुजराती में, पूरे जंग वाला एक पलंग लेकर के चला आ रहा था। उसके बीच में कोई तंतु वगैरह कुछ भी नहीं थे, सिर्फ उसका फ्रेम पलंग का लेकर के आ रहा था। फिर धन्य कुमार ने उससे कहा कि तुम ये बेचोगे? वो बोलता है कि हाँ बेचूंगा, आप क्या देंगे? तो बोले कि ये लो बैलगाड़ी ले लो। और फिर वो तुरंत तैयार हो जाता कि चलो कम से कम बैलगाड़ी इससे तो बेहतर है, तुरंत तैयार हो जाता है। और सोचता है कि अब देर करने का काम नहीं, कहीं दिमाग ना बदल जाए किसी, इनकी विचार ना बदल जाए। तुरंत वो पलंग दे देता। फिर वो नौकर सोचता है कि चलो सब पैसे तो पानी में चले गए, अब इनसे पूछा जाए कि भूख लग रही के लिए। पूछता तो फिर धन्य कुमार बोलता है कि हाँ लग रही भूख तो बोले कि चलिए अब घर चलो, व्यापार हो गया ना। तो धन्य कुमार बोलता है कि हाँ हो गया व्यापार, वापस घर आते हैं, घर आते हैं तो जब वो टूटा पलंग देखते हैं, वो उनके सात भाई बड़े भाई थे, वो जब देखते हैं तो वो देख करके खूब खिल्ली उड़ाते हैं कि वाह रे वाह, क्या व्यापार करके आया, आ जाओ स्वागत है, आओ धन्य कुमार, बहुत बढ़िया व्यापारी निकले तुम। खूब उसकी हंसी उड़ाई, खूब मजाक किया। लेकिन माँ ने ऐसे देखा कि मेरा बेटा 100 दीनार 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले ये जो कुछ भी लेकर के आया है, ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा इतना पुण्यहीन है कि ऐसी कोई ऐसी व्यर्थ की वस्तु आ जाए उसके द्वारा। चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। तो फिर उसने उस पलंग को साफ किया, उसके फ्रेम को, और साफ करते करते उसका पाया टूटा, तो वो जितने भाई थे वो और हंसने लगे। देखो तुम, मतलब कितना अविवेक है, पुत्र के मोह के कारण तुम्हें स्पष्ट जो दिख रहा है कि जिसमें जंग लगे हुए पाए हैं और सारी चीजें ऐसी खराब है, उसको भी तुम धो रही हो, बोले माँ को। और जैसे वो पाया अलग हुआ, बोले कि देखो ये टूट करके अलग हो गया ना, और अलग हो करके जब वो पाया ऐसे क्या होता है कि रोल होते हैं ना, कभी कोई चीज ऐसे अलग होती है तो फिर वो जमीन पर ऐसे लुढ़कती हुई आगे जाती है, तो लुढ़कती हुई आगे जाती है, ऐसे दीवार से टकराता है वो पाया, और फिर उसके अंदर से कुछ चीजें निकलना प्रारंभ हो जाती है, दो चार ऐसे दाने जैसे निकले बाहर। तो फिर वो लोग देखते हैं कि ये क्या है, चमकीले थे, फिर देखते हैं कि है क्या चीज। तो माँ ऐसे उठाती है तो तुरंत पहचान लेती है कि ये तो रत्न है। फिर उस पाए को ऐसे उलटते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारे पन्ना, बहुत सारे पुखराज, कई हीरे, कई माणिक, कई मोती, बहुत सारे रत्न निकल करके आते बाहर, और अंत में एक कागज का टुकड़ा उसके साथ बाहर आ जाता है। सेठ को जब ये सुनने मिलता है तो घबरा जाता है कि पता नहीं ये कौन सी आफत आ गई, ये मालूम नहीं कहां से चोरी का माल होगा, और फिर उसने उसको पता नहीं कैसे कहां से मेरे घर आ गई ये चीज, भगवान जाने ये माल कैसा क्या है। तो वो पूरा वो पलंग लेकर के राजा के दरबार में जाकर के सारी घटना का निवेदन करता है कि आज पहली बार मेरा लड़का व्यापार के लिए गया और फिर ऐसी ये घटना हो गई, इसमें से ये रत्न निकल रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं किसके हैं, इसके अंदर से एक चिट्ठी और निकली है, आप देख लीजिए। अब राजा उस चिट्ठी को लेते हैं हाथ में, और फिर राजा को आश्चर्य होता है कि ये सब कैसी क्या घटनाएं हो रही है, कुछ सालों पहले आया था तब भी अपने बच्चे के बारे में कुछ बता रहा था, और अब ये फिर क्या हो गया, समझ में नहीं आता। उस पत्र को पढ़ता है वो, और पत्र को पढ़ करके वो राजा स्वयं मुस्कुराने लग जाता है। तब सेठ जी पूछते हैं कि क्या हो गया राजन, क्या लिखा है पत्र में। तो राजा बोलते हैं कि सुनाता हूँ, बोले फिर उसमें लिखा था ऊपर सबसे पहला शब्द मान्यवर, यह एक लोहे का पलंग है और इसके भीतर मैंने कुछ रत्न रखे हैं, और यह पत्र भी साथ में रख दिया है, और इसका कारण केवल इतना है कि मैं आपकी इसी नगरी का एक समय निधिपति था, मैंने बहुत बड़ा सेठ था और मेरे पास बहुत विशाल संपत्ति थी, पर मुझे अंत अंत में ये चिंता हुई कि मेरी इस विशाल संपदा का स्वामी भविष्य में कौन बनने वाला है। संयोग से उस समय एक अवधिज ज्ञानी मुनिराज पधारे और मैंने उनसे ये प्रश्न पूछ लिया। उन्होंने उत्तर दिया कि इस संपदा का स्वामी धन्य कुमार होगा, सो इसलिए ये पत्र मैं धन्य कुमार के नाम छोड़ करके जा रहा हूं, और फिर इसके नीचे मेरी संपत्ति कहाँ रखी हुई है उसका नक्शा भी मैं दे रहा हूं, और उसने एक मैप भी नीचे बनाया हुआ था, उस पत्र के नीचे की तरफ एक नक्शा बना हुआ था। बस तब राजा सेठ को दिखा करके बोलता है कि देख सेठ, इसमें डरने की क्या बात थी, ये तुम्हारे ही बेटे के नाम है ये पत्र, इसलिए जाओ अच्छे खुशी से रहो, तुम्हारा बेटा साधारण नहीं है, बड़ा पुण्यशाली है। तो जब ये चीजें बड़े भाइयों को मालूम पड़ी तो बोले कि अरे कहां से कहां क्या संयोग फिट हो गया, बोले कि सोचा था कुछ और फिर निकला कुछ। बोले हम तो उसको रद्दी जंग लगा हुआ पलंग समझ रहे थे और उसमें से बड़ा भारी खजाना निकला है। चलो कोई बात नहीं। फिर उस नक्शे के अनुसार वहां जब पहुंचे, फिर उसमें और भी कुछ बातें लिखी थी, कुछ लाइनें लिखी थी पत्र में कि तुम चाहो तो उस महल में रह सकते हो जहां का मैं ये नक्शा दे रहा हूं। और फिर वो गए वहां पर तो पता चला कि एक बहुत पुराना महल है और वहां जाकर के फिर परिवार को सबको पसंद आ गया कि भाई ये अपने उस घर से तो बहुत बेहतर है, भले पुराना हो लेकिन इसको अगर साफ सफाई कर दी जाए तो फिर बहुत सुंदर महल है ये, इसमें अपन रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो पूरा परिवार वहां शिफ्ट हो गया, वहां स्थानांतरित हो गया, वहां सब लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। लेकिन फिर भी माँ का जो पक्षपात, अब व्यापार व्यापार कुछ नहीं कराते थे, अब फिर से बड़े ठाट से रह रहा था धन्य कुमार। तो फिर किसी दिन उनके दिमाग में वो बात आई कि अभी देखो ये फिर से बैठे बैठे खा रहा। बोले ये भूल गए कि भाई इसी की कृपा से हम लोग इतने बड़े महल में रह करके सब काम कर रहे हैं। तब उनको लगा कि अब माँ से बोलना तो व्यर्थ है, पिताजी से बताना भी व्यर्थ है, अपन खुद ही योजना बना लें कि क्या करना, कोई ऐसा उपाय किया जाए कि ये किसी दिन घर से बाहर निकल जाए और वापस घर पे लौट के ही ना आए। ईर्ष्या का अंतिम परिणाम हमेशा बुरा होता है। शुरू शुरू में ईर्ष्या होती है तो कभी स्पर्धा करने लग जाता है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अगर पुण्य साथ न दे तो फिर और उल्टे सीधे बुरे विचार भी करता है। तो इन्होंने अपने भाई को अलग करने का षड्यंत्र रचा और एक दिन छुट्टी के दिन सातों भाई कहने लगे कि चलो माँ आज हम लोग सब बावड़ी पर तैरने जाएंगे। एक बावड़ी बाहर थी, नगर के बाहर थी, वहां हम तैरने जाना चाहते हैं, इसलिए आप इसको अपने पास रखना। बोले धन्य कुमार ये ना आ जाए बीच में हमारे साथ, ये छोटा है ना, ये छोटा है इसलिए इसको अपने पास रखो, हम जा रहे हैं। अब धन्य कुमार ऐसे माँ की तरफ देख करके बोलता है कि माँ मेरे को भी जाना है। फिर माँ उनसे बोलती है भाइयों से कि जब तुम लोग खेलने जा रहे हो तो छोटा तो खेल सकता है, उसमें क्या बात है, इसको भी ले जाओ साथ में। फिर बोले कि फिर हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं ले जाते। तो माँ बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, बड़े भाई हो तो छोटे की जिम्मेदारी तो रखना पड़ेगी, इसको सही सलामत लाना है तुम्हें वापस, इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो फिर ऐसी बातें चलती रहती है और फिर वो लोग तैयार नहीं होते ले जाने के लिए। तब धन्य कुमार माँ से जिद करके उनके साथ जाने का निर्णय कर लेता है और माँ भी उसको कहती है कि ठीक है चले जा तू उनके साथ। और माँ को तो ये लग रहा था कि ठीक है कुछ भी कर रहे हो, भाई तो है तो ध्यान तो रखेंगे। और वो चला जाता है और जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो आपस में झूठी लड़ाई लड़ने लगते हैं। क्या लड़ते हैं कि मैं पहले कूदूंगा। अंदर से कोई नहीं चाहता था कि पहले कूदे पानी में, मैं छलांग पहले लगाऊंगा। तो धन्य कुमार ने बोला कि नहीं हम छोटे हैं, हम सबसे पहले कूदेंगे। तब फिर उन्होंने बोला कि अच्छा तुम कूदोगे पहले। तो बोले कि अच्छा ठीक है चलो तुम छोटे हो तो कूद जाओ। और धन्य कुमार बेचारा भोला भाला उनके षड्यंत्र में आ गया और जैसे ही वो पानी में कूदता है ये लोग तुरंत एक चट्टान उठाते हैं, पूरी सब सेटिंग थी पहले की, एक चट्टान उठाते हैं और फिर ऐसे उसकी पीठ पर डाल देते हैं। वो धन्य कुमार उस चट्टान के नीचे पानी में डूबता चला जाता है और ये लोग सब वहाँ काफ़ी देर तक देखते रहते हैं कि कोई अभी निकल करके आने का कोई चारा नहीं है, काफ़ी देर हो गई, निश्चित ही डूब मरा होगा, चलो अपन वापस चलते हैं। वापस जब घर जाते हैं तो फिर माँ पूछती है कि धन्य कुमार कहाँ है। तब वो बोलते हैं कि वो तो हम लोगों ने रोका लेकिन फिर भी वो कहीं चला गया। बोले वहाँ पर फिर बहुत आवाज़ लगाई लेकिन आया नहीं, तो हम लोग आ गए वापस, हमें खाना खिलाओ। तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कहाँ चला गया होगा मेरा बेटा, बहुत आकुलित होती है। और वहाँ जब उस चट्टान के नीचे दबते हुए धन्य कुमार ने एहसास कर लिया कि ये सब एक माया जाल था और मुझे मारने का एक उपाय था। ये बात उसको समझ में आ गई तो अब तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि पानी में एक तो श्वास नहीं ले सकूंगा और दूसरी बात ऊपर पीठ पर इतना बड़ा पत्थर है तो उस पत्थर को मैं हटाऊंगा कैसे। पर उसको फिर एक दिन ख्याल आया, उसी समय ख्याल आया कि एक दिन मेरी माँ ने कहा था कि कठिन से कठिन परिस्थिति में नमोकार मंत्र से काम सुलझ जाता है। जैसे ही उसको स्मरण में आया माँ का वाक्य, अब सांस भी घुटने लगी थी, उसने उसी समय तीनों लोक में पूजनीय इंद्र धरणेन्द्र और चक्रवर्तियों के द्वारा निरंतर स्मरणीय और बड़े बड़े मुनिराजों के द्वारा आचार्यों के द्वारा भी आराध्य नमोकार महामंत्र का स्मरण किया। बोल तो सकता नहीं था लेकिन मन में उसने नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छयाणम, नमो लोए सब सामने। जैसे ही महामंत्र का स्मरण किया तो जल देवता का आसन वहीं कंपित हो गया। उसको लगा कि कोई धार्मिक बुद्धि वाला जिनेंद्र भक्त इस समय संकट में है। अब जैसे ही उसको ये जानकारी हुई, उसने तुरंत अपने ज्ञान से जाना तो पानी में देखा कि एक बच्चा किशोर बड़े भारी पत्थर के नीचे दब गया है। उसने उसको तत्काल उस पत्थर से अलग किया, पत्थर को वहां से हटा दिया और पानी के अंदर ही एक वायु का वातावरण उसने निर्मित करके थोड़ी देर उसको वहीं बैठा ला।